श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 34 डेट 24 मार्च 2015 स्पीकर तत्ववेत्ता प्रभु
वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम श्री गुरु नवैष्णवंश श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथनितम तम सजीव साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखानुतं च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांत मधेव मे विशतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते आनंदलीलामय विग्रहाय हेमं दिव्या सभी सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते चैतन्य सुंदराय नमो नमस्ते हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिन भी है, इसलिए परम पवित्र दिन आज है। और साथ साथ में हम भागवत श्रवण कर रहे हैं कई दिनों से, उसमें भगवान कृष्ण की मधुर लीलाएं जो वर्षा ऋतु और शरद काल में जो संपन्न किए उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो वर्षा ऋतु का वर्णन समाप्त करते हुए आज के श्लोक से शरद ऋतु का वर्णन प्रारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी। जो वृंदावन धाम माधुर्य धाम है, जहाँ भगवान मधुर मधुर लीलाएं करते हैं अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, और वात्सल्य भाव में नंद महाराज यशोदा मैया आदि वात्सल्य भाव में जो गोपियाँ उनके साथ अनेक अनेक माधुर्य लीला भगवान संपन्न करते हैं श्री वृंदावन धाम में। तो इस माधुर्य धाम वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, और साथ साथ में ये माधुर्य धाम होने के साथ वृंदावन धाम बहुत महत्वपूर्ण और भक्तों के लिए एक आश्रय स्थान अथवा एक लक्ष्य है श्री वृंदावन धाम। लेकिन नित्यानंद प्रभु एक समय श्रीवास आंगन में बैठे हुए थे, कई भक्तों के साथ, श्रीवास आदि सभी भक्तों के साथ मंडली बनाकर, तो उसी समय जीव गोस्वामी नवदीप धाम में प्रवेश करते हैं और नित्यानंद प्रभु के शरण में दंडवत प्रणाम करके उनके शरण में प्रार्थना करते हुए उस वैष्णव सभा में जीव गोस्वामी बैठ जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने पहले कहा था जीव गोस्वामी को कि आप नवदीप मंडल परिक्रमा करके फिर बाद में तुरंत वृंदावन जाना है आपको। तो फिर नवदीप परिक्रमा करते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी। परिक्रमा पूरा होने के बाद इस सभा में श्रीवास आंगन में बैठते हैं सभी वैष्णव के साथ और जीव गोस्वामी प्रणाम करते हैं नित्यानंद प्रभु को। तभी नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जतने श्री नित्यानंद जिज्ञासे वचन कत दिन परे जाबे तुम्ही वृंदावन। हे जीव, तुम कभी वृंदावन जा रहे हो, कई दिनों से नवदीप धाम में निवास करते हो, तभी तुम्हारा समय आ गया है वृंदावन जाने के लिए। तब जीव गोस्वामी जवाब देते हैं कि जीव बोले प्रभु आज्ञा सर्वपरि है, आज्ञा पायले करी आमी वृंदावन आश्रय। हे प्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आप जब आज्ञा करेंगे तब मैं वृंदावन जाऊंगा, इसलिए मैं आपके आज्ञा का इंतजार करता हूं, आप जब बोलेंगे तब वृंदावन में जाऊंगा। तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को इसके शरण में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप जब आज्ञा करेंगे तब मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। जीव गोस्वामी कहते हैं छोटा सा प्रश्न है, तो उस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, फिर बाद में मैं वृंदावन जाऊँगा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं यही नवदीप धाम है वृंदावन, तबे कहने वृंदावन गमने यतन। ये धाम जो है साक्षात वृंदावन है, वृंदावन से अभिन्न है। जिस तरह वृंदावन और नवदीप धाम में कोई अंतर नहीं है, पहले बहुत वर्णन किया है नित्यानंद प्रभु ने जब परिक्रमा करा रहे थे तब। तो नित्यानंद प्रभु के मुख से सुना जीव गोस्वामी ने इस प्रकार का वर्णन, तब जीव गोस्वामी कहते हैं कि नवदीप धाम में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, तो फिर क्या प्रयोजन है वृंदावन जाने के लिए, मैं इधर ही रहूँगा। आज्ञा जीव बोले प्रभु आज्ञा सर्व नहीं, यही नवदीप धाम है वृंदावन, तबे कहने वृंदावन गमने यतन। यह नवदीप धाम वृंदावन है, फिर यहाँ से जाने का गमन करने के क्या प्रयोजन है, इसलिए मैं यह ही रहूँगा। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं से ही वृंदावन धाम रसे रे आधार, ये वृंदावन धाम और रस का आधार है। जो भगवान कृष्ण वहाँ मधुर मधुर लीला करते हैं और सभी भक्तजन वैष्णवजन उसको श्रवण करके उसमें रस प्राप्त करते हैं, उस वृंदावन धाम रस का आधार है। से वृंदावन धाम रसे रे आधार, से रस पाए से रस ना पाए जार ना अधिकार। वो रस का आधार है वृंदावन धाम, लेकिन से रस ना पाए जार ना अधिकार, जिसका अधिकार नहीं है वो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो वृंदावन धाम का जो रस है, उस रस को जिसका अधिकार नहीं है, जिसका भक्ति में इतना उन्नति नहीं है, वो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जीव गोस्वामी को, यद्यपि देखा जाए तो वृंदावन और नवदीप धाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो वृंदावन धाम है वो जिसका अधिकार है उसी को रस प्रदान करता है, अन्यथा किसी दूसरे का नहीं। जिसको अधिकार नहीं है, भक्ति में उन्नत नहीं है, उनको अधिकार प्राप्त नहीं होता है रस का। लेकिन कृपा करी से ही धाम नवदीप है, वही वृंदावन धाम कृपा करके वही नवदीप धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। यथ रस अधिकार जेवे उपजाए, जो वृंदावन धाम का जो रस है वो सभी वैष्णव या सभी भक्तों को अधिकार नहीं है, लेकिन वही धाम कृपा करके नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं तो अनायास सभी को रस प्राप्त होता है। श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कृपा करी से ही धाम नवदीप है, यथ रस अधिकार जीवे उपजाए। वही रस जब नवदीप धाम में कोई वास करता है तो रस उपजाए, उसको रस प्रकट कराता है नवदीप धाम। तो इसलिए जो माधुर्य धाम है वृंदावन धाम और नवदीप धाम है औदार्य धाम, उदारता, जिसका अधिकार हो या न हो फिर भी वो रस प्राप्त कर जाएगा जो नवदीप धाम में निवास करता है जो व्यक्ति, क्योंकि वह धाम की महिमा है। क्योंकि वृंदावन धाम में अपराध का अपेक्षा रहता है, वहाँ फल भी है और साथ साथ में वहाँ निवास करने से अपराध भी लगता है धाम का, लेकिन नवदीप धाम अपेक्षा ना रखे। अपराध का अपेक्षा नवदीप धाम में नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपराध जानबूझकर अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी सावधानीपूर्वक अगर नवदीप धाम में निवास करता है कोई व्यक्ति, तो आसानी से वो गौर प्रेम और साथ साथ में राधा कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है माधुर्य धाम वृंदावन धाम और साथ साथ में औदार्य धाम है श्री नवदीप धाम, दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन साधन भक्ति में जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है नवदीप धाम। इसलिए प्रभुपाद ने कहा साधन का मेरा स्थान है नवदीप धाम, वो घर है वास्तव में वृंदावन धाम, लेकिन साधन का भूमि है नवदीप धाम। तो साधन भक्ति के लिए जो है वो नवदीप धाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसानी से वो गौर प्रेम नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेकर कोई नवदीप धाम में निवास करता है तो निश्चित रूप से वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रकार आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है। आज का श्लोक आश्रम के बारे में और साथ साथ में शिक्षा भी देते हैं कि किस तरह कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। तो आश्रम जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, तो जो ब्रह्मचारी आश्रम में जो गुरुकुल में निवास करते प्राय वो ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत कठिनाइयाँ आती है ब्रह्मचारी जीवन में पालन करने के लिए, क्योंकि पहले तो उनको गुरु के आदेश अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। रोज भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाना पड़ता है और भिक्षा मांगकर लाकर जो भी मिला वो गुरु को चरणों में अर्पित करना पड़ता है, और फिर बाद में अगर गुरु आज्ञा दे तभी उनको ग्रहण कर सकता है, अगर गुरु आज्ञा न दे तब तक वो प्रसाद नहीं पा सकता है। ऐसा कई नियम है ब्रह्मचारी का। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को ये आश्रम का वर्णन करते हैं। तो श्री नारद मुनि सर्वप्रथम ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णन करते हुए फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन करते, उसमें भी बहुत कठिनाइयाँ है, बहुत सारे नियम श्री नारद मुनि वहाँ राजसूय सभा में कहते हैं मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज के सामने। तो वानप्रस्थ जीवन जो 50 साल के बाद व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर वानप्रस्थ स्वीकार करता है तो उनको वन में जाकर निवास करना पड़ता है, और वन में जाकर निवास करने से उनको पकाया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए, सूर्य के धूप से जो भी फल पकता है वही ग्रहण करना चाहिए, और भगवान का जो नाम कीर्तन है वही सतत करना चाहिए। इसी तरह वानप्रस्थ जीवन और वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर बाद में संन्यास जीवन में भी बहुत कठिन है, तात्पर्य में दिया है कि प्राय हम देखते हैं और देखा जाता है कि जो संन्यासी है वो निराकार और ब्रह्मवादी में प्राय होते हैं। हरिद्वार में जाए तो बहुत ऐसे साधु संन्यासी हाथ में दंड लेकर घूमते हैं और देखते हैं हाथ में दंड है, संन्यास धारण किया है, लेकिन खड़े कहाँ है, जहाँ चाय की लाइन लगी है, कोई आश्रम चाय बारता है वो चाय के लाइन में खड़े रहते हैं। तो इसी तरह वो संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं कहीं कहीं, जो वास्तव में वो उसका उद्देश्य वो नहीं होता, लेकिन ये भौतिक जगत में जंजाल से छूटने के लिए कोई कोई ऐसे संन्यास ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह संन्यास में बहुत कठिनाई आती है, और साथ साथ में फिर ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन करते हैं। फिर नारद मुनि रुक जाते हैं, तुरंत युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, श्रीमद् भागवतम 7 स्कंद 14 अध्याय श्लोक 1 युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवी विधिनाम येन सांजसा या देवे ऋषि ब्रूहि मादृश्य गृह मूढधि। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि आपने तो पहले 4 आश्रम बताए लेकिन वर्णन तो 3 ही किया, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास, गृहस्थी छोड़ दिए, नारद मुनि को ऐसा लगा कि युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ जीवन में है, इसलिए उसका अनुभव है, इसलिए उसका कोई वर्णन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो छोड़ दिया गृहस्थ आश्रम का वर्णन करना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उन्हें तुरंत प्रश्न किए कि गृहस्थ एताम पदवी, मेरे जैसा जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, विधि नाम ये नंजसा यावत देवे ऋषि, हे ऋषि, हे नारद मुनि, ब्रूही मुझे कहो कि मादृश्य गृह मूढ़धि, मेरे जैसा जो गृहस्थ जीवन में मूढ़धि अपने आप निम्न समझते हुए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज तो महान भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण हमेशा उनको संग लेने के लिए, पांडवों का संग लेने के लिए द्वारका से बारम्बार हस्तिनापुर जाते हैं पांडवों का संग लेने के लिए, तो वास्तव में महान भक्त है। फिर भी वो कहते हैं कि मादृश्य गृह मूढ़धि, मेरे जैसा जो मूढ़धि जो मूर्खमति वाला है, वो गृहस्थ जीवन की जो पदवी प्राप्त की है वो कैसे है उससे मुक्त हो सकते हैं, उसका उपाय बताइए। तो उसके वर्णन में भी श्री नारद मुनि बहुत सारे वर्णन करते हैं। इसी तरह आज के श्लोक में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और ब्रह्मचारी का जीवन इसी तरह तपस्या से जब परिपूर्ण होता है, तब जिस तरह बादल वर्षा ऋतु से समाप्त होने के शरद ऋतु आता है स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह ब्रह्मचारी का जीवन स्वच्छ हो जाता है जब साधना में पूर्ण रूप से समाप्त होता है तब। और गृहस्थी जीवन का उदाहरण दे रहे हैं पशु का, सबलम, जिस बड़ा गांव में देखा जाता है कि बारिश होता है तब पशुओं को अपना ढाड़ियों के, हिंदी में हो गया ना, जो छपरा बना कर शेड बनाते हैं ना, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, गुजराती में उसको ढाड़िया कहते हैं। तो बारिश आने के जब खुला मैदान में रखते हैं पशुओं को, लेकिन बारिश आते हैं जब, तो बारिश से बचने के लिए उनको छपरा जैसा बनाकर उसी में पशु को रखते हैं, लेकिन वो छोटा जगह कम रहता है, खुला तो खुला रहता है मैदान रहता है, तो उसमें पशु आराम से घूम सकता है। लेकिन जब ये छपरे के नीचे बांध देते हैं तो कम जगह में ज़्यादा पशु को बांधते हैं, तो उसको संकुलित कम जगह में वो उसको रहना पड़ता है पशुओं को। तो इसी तरह गृहस्थ जीवन का इसी तरह हालत है कि जो अपने पत्नी संतान के साथ वो रहता है और अनेक अनेक कार्य करने पड़ते हैं, और उस कार्य करते करते वो ऊब भी जाता है, नई इच्छा होने के बाद भी वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह बारिश बंद होने के बाद शरद ऋतु आता है और खुला हो जाता है, तब पशुओं को छोड़ देते हैं और खुला मैदान में वो घूमने लगते हैं। तो इसी तरह कोई गृहस्थी जीवन में आसक्त होकर कार्य करता है, लेकिन जो कोई कृष्ण भक्ति अपनाता है तो तुरंत ही वो अपना भौतिक कार्य कम करके वो भक्ति मार्ग में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करने लगता है, वो पूर्ण रूप से मुक्त रूप से वो विश्राम करता है, जिस तरह पशु। तो गृहस्थ जीवन का उदाहरण खास करके आज के श्लोक में पशुओं के साथ दिया गया है। प्रायः देखा जाता है कि जो गृहस्थ जीवन है, जो भक्त है उनकी बात नहीं है, पर भौतिक जगत में देखते हैं तो गृहस्थ जीवन जो जीते हैं, वो जो अपनाया है, वो लगता है बहुत सुखी है ऊपर से, लेकिन वास्तव में बहुत दुखी होते हैं, कहीं कहीं प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। और देखा जाता है कि कितनी मेहनत करते हैं आज के ज़माने में, आज के समय में इतना महंगाई के साथ अपना घर कुटुंब चलाना बहुत कठिन है। प्रायः देखा जाता है कि विदेश जो पाश्चात्य की सभ्यता आज भी भारत में प्रारंभ हो गया है, कि जो घर में जो स्त्री पुरुष है दोनों को सर्विस के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो पुरुष काम करता है, व्यक्ति काम करता है, उससे घर चलता नहीं है, तो इसलिए दोनों को सर्विस करना पड़ता है या जॉब करना पड़ता है या काम पर जाना पड़ता है, तभी वो अपना घर गृहस्थी चला पाता है। तो दोनों को परिश्रम करना पड़ता है, और शाम को आकर जब घर में आते हैं तो उनको लगता है कि हमें कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में वो समय का व्यर्थ उपयोग करते हैं और अपना जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो जिस तरह पशु का जीवन बीत जाता है आहार निंदा भय मैथुन में, उसी तरह गृहस्थ जीवन का जीवन भी इसी तरह बीत जाता है। तो गृहस्थ जीवन का जो गृहस्थ आश्रम है, ग्रह मेघी है आश्रम नहीं, तो उसका उदाहरण पशुओं के साथ दिया गया है आज के श्लोक में। और साथ साथ में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ को उदाहरण दिया है कीचड़। जब बारिश होता है तो कीचड़ होता है, लेकिन जब शरद ऋतु आता है तो कीचड़, सूर्य के धूप से कीचड़ सूख जाता है और स्वच्छ जगह हो जाता है। उसी प्रकार वानप्रस्थ जो जीवन अपनाता है वो बहुत तपस्या करने के बाद उनका जीवन स्वच्छ हो जाता है। और सन्यास आश्रम का तुलना किया है स्वच्छ जल के साथ। जो सन्यास जीवन व्यतीत करते हैं, जो पूर्ण रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तो उनका जीवन निर्मल हो जाता है। तो प्राय ये सब विधि दिया है, लेकिन वो निर्मल होने का, अस्वस्थ होने का या पशु जैसी बद्ध अवस्था से छूटने का उपाय क्या है? तो कहते हैं कृष्ण भक्ति यथार अशुभम। कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति इस सारे बंधन से या सारे उपाधि से छूट जाता है। किस तरह, क्यों छूट जाता है? तो बोला अशुभम, जो भक्ति है जो अशुभ कार्यों को शुभ में परिवर्तन कर देती है। वास्तव में शुभ देखा जाए, हम दरवाजे पर लगते हैं लाभ शुभ, लेकिन वो शुभ दिखने मात्र है, जीवन में नहीं आता है। जीवन में तभी शुभ आता है जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं अपनाते तब। इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रारंभ में ही भक्ति का छह लक्षण या शुद्ध भक्ति का छह सार प्रस्तुत किया। शुरुआत में भक्ति रसामृत सिंधु प्रारंभ करते ही, तो उसमें पहला जो शुद्ध भक्ति का लक्ष्य है या गुण है वो क्लेशाग्नि प्रथम है। क्लेशाग्नि, जो कोई भक्ति, शुद्ध भक्ति अपनाता है कोई व्यक्ति, तो उनके जीवन में जो क्लेश है वो नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम सर्व लक्षण, प्रथम लक्षण भक्ति का। तो क्लेश का है विस्तार से वर्णन श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने भी बहुत सुंदर रूप से किस तरह और क्लेश किसको कहते हैं उसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में श्री प्रभुपाद ने किया है। और दूसरा है लक्षण भक्ति का शुभदा। शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली भक्ति। जो कोई कृष्ण भक्ति अपनाता है उनको अपने आप शुभ दान या शुभ की प्राप्ति होती है। शुभ मतलब कल्याण प्राप्त होता है, उनके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। तो दूसरा लक्षण है शुद्ध भक्ति का शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली भक्ति। अगर कोई कृष्ण भक्ति अपनाता है तो उनके जीवन में जो कष्ट है, कोई भी हो, उसमें ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास, लेकिन जो कृष्ण भक्ति अपनाता है उनके जीवन में शुभदा, शुभ प्रदान करने वाली भक्ति होती है। और तीसरा है भक्ति, जब कष्ट क्लेश नष्ट हो जाता है और जीवन में मंगल या शुभ आता है, तब वही भक्ति आनंद प्रदान करती है। आनंदम बुद्धिवर्धनम, तीसरा लक्षण है भक्ति का, कि तुरंत वो जो दुखी जीवात्मा है इस भौतिक जगत में आकर, लेकिन कृष्ण भक्ति जो कोई अपनाता है तो तुरंत वो आनंद प्राप्त करने लगता है। और वो आनंद क्या है? परमानंद आनंद, जो भौतिक वस्तु से क्षणिक सुख प्राप्त होता है ऐसा आनंद नहीं, हमेशा रहने वाला और आत्मा के साथ चलने वाला आनंद वो भक्ति करके, जो कृष्ण भक्ति करता है वो प्राप्त कर लेता है। तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण है भक्ति दुर्लभम। जो भक्ति दुर्लभ है लेकिन कोई साधु के संग में आकर कृष्ण भक्ति करने लगता है, जो दुर्लभ वस्तु है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है वो भक्ति। तो दुर्लभ भक्ति श्री रूप गोस्वामी क्यों कहते हैं? कि दुर्लभ इसलिए है कि भक्ति कोई सुकृति द्वारा प्राप्त नहीं होती है। प्राय हम सुनते हैं कि पिछले जन्म का कोई सुकृति होगा इसलिए हम भक्ति मार्ग में आए हैं। भक्ति सुकृति द्वारा प्राप्त नहीं होती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबनी में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। जिस तरह भगवान कृष्ण स्वतंत्र है उसी तरह भगवान की भक्ति स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भगवान किसी के पर निर्भर, भगवान संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसी प्रकार भक्ति भी स्वतंत्र है। कोई सुकृति द्वारा अगर प्राप्त कर ले तो उसको स्वतंत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधीन हो जाएगी सुकृति के द्वारा, कोई पुण्य के कर द्वारा, तो भक्ति को स्वतंत्र माना नहीं जाएगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्ति है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी सुकृति द्वारा प्राप्त भक्ति नहीं होती है, ना ही धन दान यज्ञ क्रिया आदि करने से तो भक्ति होता प्राप्त होता ही नहीं, अन्य कोई उपाय से भक्ति प्राप्त नहीं होता है, और सुकृति द्वारा भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो कैसे होती है, तो बोल साधु के कृपा से व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए श्री प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तब कुछ साल के बाद उनके शिष्य कह रहे थे, प्रभुपाद को प्रश्न किया कि प्रभुपाद हमारा कौन सी सुकृति होगा कि हम ये कृष्ण भक्ति में या नाम जप कर रहे हैं अभी। तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि आपके कोई सुकृति नहीं थी, आपने सिर्फ मेरी कृपा से भक्ति प्राप्त किया है। तो इसलिए जब तक साधु की कृपा नहीं हो, कई उदाहरण है शास्त्र में श्री नारद मुनि द्वारा कहीं को भक्ति प्रदान किए हैं, तो इसलिए कई शास्त्र में उदाहरण है श्री प्रभुपाद ने कहा कि मेरी कृपा से ही आप लोगों को भक्ति प्राप्त, आपके पास कोई सुकृति नहीं था लेकिन मेरी कृपा से आपको भक्ति प्राप्त हुआ है। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कोई साधु की कृपा अगर प्राप्त हो जाए इसी जन्म में या पिछले जन्म में, कोई भी जन्म में अगर साधु की कृपा है तभी वो कृष्ण भक्ति या शुद्ध भक्ति उस जीव को प्राप्त होती है, अन्यथा शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति का जो लक्षण है स्वथा लक्षण वो दुर्लभा बताते हैं, जो भक्ति दुर्लभ है। और पांचवा है भक्ति, और जो भक्ति करने लगते हैं इस तरह वो दुर्लभ भक्ति को प्राप्त कोई जीव कर लेता है तो अपने आप उसको आनंद इतना आता है कि उसको कोई कामना नहीं रहती, यहाँ तक के जो पांच प्रकार की मुक्ति है उनको भी वो नहीं चाहता है। रूप गोस्वामी वहाँ भी विस्तार से वर्णन किए भक्ति रसामृत सिंधु में, क्योंकि भक्ति में इतना रस है, आनंद है, तो अन्य किसी की कामना वो व्यक्ति या जीव या भक्त छोड़ देता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करूँ, वही उनका जीवन का लक्ष्य बन जाता है, बाकी कोई कामना नहीं रहता है। और छठा है, और इसी तरह कोई भक्ति में करता है जिसका क्लेश नष्ट हो गया हो और जिनके जीवन में मंगल हो और आनंद प्राप्त करता हो और मोक्ष से कोई कोई इच्छा न हो, पांच प्रकार की जो मुक्ति है उससे भी वो मुक्त हो गया हो, तो ऐसे भक्त कृष्ण को भी आकर्षण कर लेते हैं। छठा लक्षण भक्ति का, जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में निष्काम भाव से करता है वो भगवान कृष्ण को आकर्षण कर लेता है। श्रेष्ठ और सबसे महान गुण भक्ति का, जो भगवान किसी के वश में नहीं आते हैं लेकिन भक्त भक्ति के द्वारा उसको वश में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जो कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण भक्ति यथार अशुभम, अशुभ कार्य को नष्ट कर देते हैं। और जो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जो स लक्षण बताए हैं, तो शुरुआत में ही भक्त कोई साधु की कृपा से भक्ति मार्ग में अपनाता है तो ऑटोमेटिक उनके जीवन में क्लेश नष्ट होता है और कल्याण प्रदान होता है और आनंद प्राप्त करता है। और दुर्लभ भक्ति है ऐसा वो समझने लगते हैं, जो दुर्लभ भक्ति है जो प्राप्त हुआ है उसको आसानी से नहीं लेना चाहिए। तो इसी प्रकार भक्ति का दुर्लभ महत्व समझते हुए वो भक्ति में पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक या उत्साहपूर्वक भक्ति में लग जाते हैं, तभी वो पांच पर छह प्रकार की मुक्ति को भी त्याग देता है और कृष्ण को आकर्षण कर लेते हैं। तो इस तरह भक्ति करने से भक्ति का इतना महत्व है। तो जिस तरह कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति सारे उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तो श्रीमद् भागवतम में इसी बात को पूर्ण करने के लिए ग्यारहवां स्कंध 14-18 नंबर श्लोक में श्री भगवान कृष्ण अपने मुख से श्री उद्धव जी को कहते हैं कि बाध्यमानो अपि मदभक्त विषया अजितेंद्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयानुवृत भूयते। हे उद्धव जी, બાધ્યમાનો આપી કોઈ જીવાત્મા આપણે પૂર્વકર્મ કે અનુસાર બધ જીવન કી દિશામાં હૈ ઓર એસા વ્યક્તિ ભી મધ ભક્તો મેરી ભક્તિ ગ્રહણ કરતા હૈ તથાપિ ભક્તિ કરતે કરતે હોય ભી વિષય મેં જીસકા ઇન્દ્રિય જીતેન્દ્રિય નહીં હૈ થોડા થોડા ભૌતિક આસક્તિ રહેતી હૈ એસે વ્યક્તિ કો ભી પ્રાગટ ભજ ઉનકે હૃદયમાં ભક્તિ પ્રગટ હોતી હૈ તો વિષયાનુર્ભી ભૂજતે ઉસ વિષય જો આસક્તિ થોડા થોડા રહેતા હૈ ઉનકો ભી વો ભક્તિ નષ્ટ કરી દેતી હૈ ઓર દૂસરા શ્લોક સાથ સાથ મેં કહેતે 19 નંબર મેં શ્લોક મેં અને ઉદાહરણ દેતે યથા યજ્ઞ સુશ્રમદ અર્ચિ કરોતી ઇન્દ્રાસી ભસ્મતા ભસ્મ સાત તથા મદ વિષયા ભક્તિ ઉદ્ધવ ઇન્દ્રાસી કૃષ્ણ નિશ્ચય અગર કિસી વ્યક્તિ કા ભક્તિ કરતે કરતે કુછ પાપ યા કુછ રહે ગયા હો તો ભક્તિ કરને સે વો જિસ તરહ અગ્નિ મેં ઈંધન ડાલને સે વો ઈંધન જલકર ભસ્મ હો જાતા હૈ જિસ તરહ અગ્નિ જલતા હૈ પ્રજ્વલિત અગ્નિ ઉસમેં લકડી ડાલને સે વો લકડી ભસ્મભૂત હો જાતા હૈ ઉસી પ્રકાર યે ભક્તિ હૈ મદ ભક્ત ભગવાન કૃષ્ણ કહેતે કે મેરી ભક્તિ ઇતની શક્તિવાન હૈ કે કિસી કા કોઈ આસક્તિ ભી રહેતા હૈ તો ઉસ ભક્તિ કરને સે વો ભસ્મભૂત હો જાતા હૈ તો ઇસ તરહ યે ભગવાન કૃષ્ણ કી ભક્તિ કી ઇતની શક્તિ હૈ ઓર સાથ સાથ મેં સાતમે સ્કંદ મેં ભી કહેતે હૈ જસ્ય નારાયણ દેવો ભગવાન હતો ગતો સદા ભક્તા કેવલ અજ્ઞાન ધુનોતી ધનવંત અર્કવત યશ્ય કોઈ નારાયણ ભગવાન કૃષ્ણ કી ભક્તિ કરતા હૈ તો ભગવાન હતો ગતો સદા જિનકે હૃદયમાં ભગવાન હંમેશા સદા રહેતે હૈ એસે ભક્તા કેવલ અજ્ઞાન કેવલ અજ્ઞાન જો અજ્ઞાન હૈ ભક્તિ કે દ્વારા હિ નષ્ટ હો જાતા હૈ ધુનોતી ધનવંત અર્કવત જિસ તરહ અંધેરા અંધકાર સૂર્ય ઉગને સે અર્કવત સૂર્ય ઉગને સે ઉજાલા હો જાતા હૈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હૈ સભી જીવ ઉસી પ્રકાર અગર કોઈ ભગવાન કૃષ્ણ કી ભક્તિ કરતા હૈ કેવલ ભક્તિ કે દ્વારા હિ હોતા કેવલ ભક્ત કેવલ ભક્તિ દ્વારા યે સંભવ હૈ કે સારે અજ્ઞાન નષ્ટ હો જાતા હૈ ઓર ઉનકે જીવન પૂર્ણ રૂપ સે ઉજાળા પૂર્ણ રૂપ સે વો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ તો યે હૈ કૃષ્ણ યા કૃષ્ણ ભગવાન કી ભક્તિ કી મહિમા જો આજ કે શ્લોક મેં બતાયા હૈ કે જો અશુભ કો નષ્ટ કરને વાલી હૈ ઓર શુભ પ્રદાન કરને વાલી ભગવાન કૃષ્ણ કી ભક્તિ ઓર ઇસ તરહ કોઈ ભક્તિ મેં લગતા હૈ તો જો સારો આશ્રમ મેં જો હૈ જો ભગવાનને સ્થાપિત ક્યાં હૈ વર્ણ ઓર આશ્રમ કી વ્યવસ્થા તો ઉસ ભગવાન કો જો ભક્તિ કરતા હૈ તો ઉસ આશ્રમ સે મુક્ત હોકર વો ભગવાન પ્રાપ્ત કર લેતા હૈ તો સંક્ષેપ મેં આજ કા યે શ્લોક કા ઇસ ઓર સાથ સાથ મેં આજ શ્રી રામાનુજાચાર્ય કા આવિર્ભાવ દિન ભી હૈ સમય તો હો ગયા તો દો દો પાંચ મિનિટ ઉનકે બારે મેં કુછ ચર્ચા કરેંગે રામાનુજાચાર્ય કે બારે મેં રામાનુજાચાર્ય આજ સે લગભગ 1200 યા 1300 સાલ પહેલે પ્રગટ હુએ જબ વૈદિક શાસ્ત્રો કા વૈદિક શાસ્ત્રો કા આધાર લેકર સભી બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરકે પશુ કે બલિ દેને લગા ઓર બલિ દેને કે બાદ ઉસી પશુ કો માંસ ભક્ષણ કરને લગે બ્રાહ્મણો પ્રાય યે વેદ કા સહારા લેકર પશુ બલિ ઓર અપને જીવા કી સંતુષ્ટ કે લિયે કાર્ય કરને લગે બ્રાહ્મણો વેદ કા સહારા લેકર પર ઉસી બહોત બઢ ગયા એસા પાખંડ બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરને લગે બલિ દેને લગે ઓર માંસ ભક્ષણ કરને લગે તબ શંકરાચાર્ય આયે સોરી ભગવાન બુદ્ધ આયે ભગવાન બુદ્ધ આકર સારે વેદ કો નેગ્લેક્ટ કિયા કે વેદ ભેદ કોઈ હૈ નહીં અહિંસા એ પર્વ ધર્મ અહિંસા એ પરમ ધર્મ હૈ બાકી વેદ ભેદ મેં જો લિખાય હો કુછ હૈ નહીં વેદ કો અસ્વીકાર કિયા ભગવાન બુદ્ધને ઓર અહિંસા કા જો પરમ ધર્મ હૈ ઉસ સ્થાપિત કિયા ભગવાન બુદ્ધને ઓર વો જો પશુ કી બલિ યજ્ઞ કરમે કરકે પશુ કી બલિ દે રહે થે ઉસ વિધિ કા નિષેધ કરી દિયા ઓર અહિંસા કી સ્થાપના કી ભગવાન બુદ્ધ ને तभी सभी अहिंसा पर्व धर्म में पालन करने लगे, लेकिन शास्त्र में जो बात थी वो कोई स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने साक्षात कहा कि शास्त्र है वो वेद शास्त्र कोई है नहीं। तो सभी जीव अहिंसा पर्व धर्म मानने लगे, आज भी है। और उसी बात को फिर से भगवान ने आज्ञा दिया भगवान शिव को कि आप जाकर थोड़ा शास्त्र का प्रचार कीजिए। तो भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आए और आकर निराकार का प्रसार किया, जो शास्त्र में वेदों में प्राय ज़्यादा वर्णन है उसका, निराकार का, ब्रह्मवादी और निराकारवाद का शंकराचार्य ने बहुत प्रचार किया। तभी जाकर कोई को लोग शास्त्र को ग्रहण करने लगे, क्योंकि ये भगवान की योजना है जो ब्राह्मणों को पशु बलि से रोकना, खुद आकर अहिंसा धर्म स्थापित किया, फिर विश्व वेद को फिर से स्थापित करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर किसी को कहा जाए, क्योंकि उस अहिंसा परम धर्म में सभी व्यक्ति का हृदय इतना अशुद्ध हो गया कि डायरेक्ट अगर साकार रूप में वर्णन करे तो स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इसलिए भगवान शंकर को भेजा कि आप जाइए और वेद का प्रचार कीजिए। तो शंकराचार्य के रूप में भगवान शंकर आए और वेद का प्रचार किए, और वेद का प्रचार करके निराकारवाद और ब्रह्मवाद का प्रचार किया शंकराचार्य, प्राय हम लोग जानते हैं। अंत में किया साकार का भज गोविंद भगवान कृष्ण का भजन करो ऐसा, लेकिन प्राय लोगों निराकारवाद में ही आज भी है शंकराचार्य के आदेश अनुसार। तो उनके बाद जब इस तरह प्रचार बहुत हो गया, बढ़ गए, तब भगवान राम के अनुज श्री रामानुजाचार्य आज से 1300 साल पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, क्योंकि रामानुजाचार्य प्रकट होकर सारे पृथ्वी में नारद पंचरात्रि विधि के अनुसार अर्षविग्रह की सेवा और साकार रूप में प्रचार किया श्री रामानुजाचार्य ने। और साथ साथ में उसी समय थोड़े आगे पीछे मध्वाचार्य भी प्रकट हुए, वे दोनों मिलकर साकारवाद या भगवान का साकार रूप का और श्री विग्रह का सेवा का प्रचार सारे विश्व में किए। तो 1300 साल पहले श्री रामानुजाचार्य इस भौतिक जगत में प्रकट हुए। तो कहीं कहीं लीलाएं हम प्राय भगवत सभी सुने हैं, तो बहुत सारे श्री रामानुजाचार्य के बारे में हम जानते भी हैं। तो उनका हेडक्वार्टर जो है दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर श्री रंगम क्षेत्र या श्री रंगम धाम है, जो रामानुजाचार्य प्राय वहाँ प्रचार किए उस श्रीरंगम क्षेत्र में। बहुत विशाल मंदिर है और कहीं कहीं वहाँ डीला भी श्री रामानुजाचार्य ने किए, और वहाँ आज भी श्री रामानुजाचार्य का विग्रह है जो औषधि के द्वारा सुरक्षित रखा गया है, और प्राय सब उनका दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जाकर हम लोग तो प्राय कहते हैं कि रामानुजाचार्य का समाधि, लेकिन वहाँ उस पंडित को हम पंडा को कहेंगे कि हम समाधि पर जाना है तो तुरंत वो गुस्से होते हैं, क्रोध करने लगते हैं, क्योंकि वो समाधि नहीं है, वास्तव में साक्षात वहाँ विराजमान है श्री रामानुजाचार्य। क्योंकि आज भी वहाँ कहते हैं और देखा जाता है कि उनका नखून है आज भी बढ़ता है श्री रामानुजाचार्य का, जो विग्रह रखा है उनका। तैसे श्री रंगम में श्री रामानुजाचार्य का विग्रह आज भी है, जो आयुर्वेदिक और कई तेल चंदन औषधि से लगा हुआ सुरक्षित वो विग्रह आज भी हम दर्शन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से श्री रामानुजाचार्य का ये जो है हम प्राय जानते हैं, 5 मिनट अभी मैं बोलूँगा। चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य है श्री रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के आचार्य है विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के आचार्य है निंबार्क आचार्य। तो ये चार संप्रदाय है, लेकिन महत्व की बात यही है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस चारों संप्रदाय से दो दो सार ग्रहण किए हैं। एक संप्रदाय से दो सार, दूसरे संप्रदाय से दो सार, ऐसे दो दो चार संप्रदाय से ग्रहण किए सार, और कुल मिलाकर 8 जो हम जिस संप्रदाय में है उसमें आठ सार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक एक संप्रदाय से दो दो सार ग्रहण किए हैं। तो उसमें मध्व है ते सारद्वय करील ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरासन। मध्वाचार्य के जो मध्व संप्रदाय है उसमें से पहला सार ग्रहण किया है केवल अद्वैत। पहले के जब मध्वाचार्य नहीं थे तब वेद भगवान जीव और परमात्मा एक ही है ऐसा वेदों का मानना था और सभी प्राय ऐसे ही मानते थे। लेकिन श्री मध्वाचार्य प्रकट होकर उसने स्थापित किया कि ईश्वर और जीव एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो वो सार को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किए। और दूसरा है कृष्णमूर्ति नित्य जानी तहार सेवन, यही थे द्वितीय सार जान महाजन। दूसरा सार ग्रहण किया मध्वाचार्य संप्रदाय से, एक केवल अद्वैत का सार, दूसरा है श्री विग्रह की सेवा, मूर्ति सेवा। तो मध्वाचार्य आज भी देखा जाता है उड़ुपी में, भगवान साक्षात है उसी तरह वो सेवा करते हैं। और जो मुख्य सन्यासी जो पीठाधीश है वही जो शिव विग्रह की सेवा पूर्ण रूप से करते हैं। प्राय 20 घंटा वो जो सन्यासी है वही भगवान की सेवा करते हैं। सुबह 2 बजकर उठकर भगवान का स्नान कराना, अभिषेक करवाना, उनका श्रृंगार करना, वो खुद जो मठाधीश है, वो जो आचार्य पद है, आचार्य पद पर है, वही सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की। इतनी इतनी श्रद्धा है। तो ऐसी श्रद्धा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में वो ग्रहण किया, श्री विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा। यही कृष्णमूर्ति नित्य जानी तहार सेवन, सेत द्वितीय सार जान महाजन। साक्षात विग्रह रूप में भगवान कृष्ण नित्य है और उनकी सेवा करना, यह दूसरा सार मध्वाचार्य के या मध्व संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया। और दूसरा श्री संप्रदाय से रामानुज हेते यामी लय दुई सार, रामानुज संप्रदाय से मैं 2 सार और लूंगा। अनन्य भक्ति भक्तजन सेवार, भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति एक सार, और दूसरा वैष्णव की सेवा, किस प्रकार वैष्णव की सेवा करनी चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में ग्रहण किए। अनन्य भक्ति, भगवान कृष्ण ही हमारा प्राण धन है ऐसा अनन्य भाव, अनन्य चिंतियंतो माम, इसी प्रकार का भाव। और वैष्णव की किस तरह सेवा करना चाहिए आज भी हम जानते हैं और देखते भी कि श्री संप्रदाय वाले वैष्णव की सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उस प्रसंग में रामानुजाचार्य का बहुत विस्तार से लीला और कथा है कि किस तरह वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये 2 सार ग्रहण किए, केवल अनन्य भक्ति और वैष्णव की सेवा। और रुद्र संप्रदाय से विष्णु स्वामी से, विष्णु है ते 2 सार करीबे स्वीकार, त्वदीय सर्वस्वभाव रागानुगम राग मार्ग आर। विष्णु स्वामी जो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से, उसने चैतन्य महाप्रभु से 2 सार ग्रहण किए। एक है त्वदीय सर्वस्वभाव, भगवान कृष्ण के संबंध में जो कोई वस्तु है वही हमारे उपास्य है या आराधना या भक्ति करने के, जिस तरह तुलसी महाराज ये भगवान कृष्ण की तदीय वस्तु है, भगवान कृष्ण के भक्त वो तदीय है। और किस तरह उनकी सेवा करना चाहिए, और राग मार्ग किस तरह राग पूर्वक अनाक्षक होकर भगवान की सेवा करना, वो 2 सार रुद्र संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किए। तदीय सर्वस्वभाव राग मार्ग आर, और 2 सार चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किए। और निमार्क स्वामी से जो कुमार संप्रदाय से, उसमें 2 सार ग्रहण किए। तुमा है ते लभियामी 2 महासार, एकांत राधा का राधिका आश्रय गोपी भाव आर। तुमा किसको कह रहे, चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर निमार्क आचार्य आचार्य को सामने ये बात करते हैं कि तुमा है ते लभियामी 2 महासार, तुम्हारे संप्रदाय से मैं 2 महासार लूंगा। बाकी के जो है वो सार कहा है, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने महासार कहा है। वो महासार क्या है, एकांत राधा राधिका आश्रय, एकांत भाव से श्रीमती राधा रानी की सेवा करना। और दूसरा राधा रानी की किस तरह सेवा करना है, गोपी भाव, गोपी भाव आर, गोपी दास अनदास, इसी तरह गोपी भाव में रहकर श्री राधिका का, श्री राधारानी का आश्रय ग्रहण करना, ये दो सार चैतन्य महाप्रभु ने श्री निमाग संप्रदाय से या कुमार संप्रदाय से ग्रहण किए। याद रहा, फिर से मैं दोहराता हूँ एक बार याद करने के लिए, फिर बाद में समाप्त करते हैं। मध्वाचार्य संप्रदाय से लिया, ब्रह्म संप्रदाय से अद्वैत, केवल अद्वैतवाद और कृष्णमूर्ति नित्य, भगवान कृष्ण की सेवा करना, और केवल अद्वैतवाद था जो द्वैत मानते थे और उनको भगवान जीव और ईश्वर अलग अलग है, इस अचिंत्य भेदाभेद तत्व चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन किया है कि जीव और भगवान अलग अलग है। वैसे गुण मात्रा में उनका थोड़ा थोड़ा है, लेकिन प्राय वो देखे जिस तरह भगवान में गुण है उस तरह जीव में थोड़ा थोड़ा अंश मात्र में गुण है, लेकिन फिर भी वो अलग है। तो ये दो सार मध्व संप्रदाय से लिए, और रामानुजाचार्य से अनन्य भक्ति और भक्ति की सेवा, और विष्णु स्वामी या रुद्र संप्रदाय से त्वदीय सर्वस्वभाव और राग मार्ग, और कुमार संप्रदाय से एकांत राधिकाश्रय और गोपी भाव। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सारे संप्रदाय से दो दो सार ग्रहण करके जो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है, जो सार रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किए हैं और हमें ये दिया है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि कितना दुर्लभ है जिस संप्रदाय में है, जिस चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम आज जो विधि मार्ग में साधन भक्ति में लगे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है। और इसी तरह अगर भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई पूर्ण रूप से उत्साहपूर्वक निष्ठापूर्वक कोई लग जाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पूर्ण आनंद और सारे क्लेशों से मुक्त होकर भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो धन्यवाद खूब खूब आप लोगों का जो मुझे आज अवसर दिया इस शुभ अवसर पर। विस्तार से वर्णन नहीं कर पाया श्री रामानुजाचार्य का, क्योंकि पूरा क्लास उनका होना चाहिए, लेकिन आज का क्लास कमलोत्सव प्रभु का ही था जो विस्तार से वर्णन करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं दे पाए, तो कुछ टूटे रहा हो तो क्षमा कीजिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो एकांत में वनमाल प्रभु से पूछ सकते। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।